नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा गाए गीत यीशु के आओ मिलके गाए गीत यीशु के आओ मिलके गाए हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा गाए गीत यीशु के आओ मिलके गाए गीत यीशु के आओ मिलके गाए
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोताओं का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से गलातियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस किस रीति से रेगिस्तान अर्थात अरब में रह करके परमेश्वर के लिए शिष्य होने के लिए चुना गया। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से पौलुस यरूशलेम में अपने अनुभवों को बांटता है, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया ताकि हम आपके वचनों का अध्ययन कर सकें। इस समय हम जब आपके वचन को रेडियो से सुनते हैं और अपने जीवन में उसे सीखने का प्रयत्न करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हम जितने भी हैं, दूर दराज में बैठे हैं, गांव में, शहरों में या पहाड़ में, कहीं पर भी क्यों ना हो, प्रभु हम सब से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारे जीवन की हर एक कमी घटियों को, हमारी जरूरतों को आप जानते हैं। आप हम सब की सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। किसी न किसी रीति से वे दुखित हैं। कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। पिताजी, आप उनसे बातचीत कीजिए ताकि वे इस बात को समझ सकें कि ये जीवन आपने उन्हें दिया है और आपके लिए दिया है, ताकि वे इस संसार में रहकर आपको आदर दे सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से आप उनकी रक्षा करें। आज अपने वचन से हम सब से बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 1 से 15 पद तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय है यरूशलेम में शिष्यों के साथ पौलुस का अनुभव, पत्रस के साथ अंताकिया में पौलुस का अनुभव, तब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना के विषय में हम देखेंगे। अब हम गलातियों के पत्री में पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों के 2 भाग में प्रवेश करते हैं। हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को स्वयं यह सुसमाचार दिया था। क्या यह वही सुसमाचार था जो शिष्यों ने प्रभु यीशु के मुख से सुना था? हम देखेंगे कि यह ठीक वही सुसमाचार है और पौलुस का यरूशलेम में शिष्यों के साथ का अनुभव। हम सुसमाचार का प्रसारण और यरूशलेम की कलीसिया द्वारा उसके सुसमाचार की पुष्टि को भी देखेंगे। यरूशलेम में शिष्यों के साथ पौलुस का अनुभव। आइए आप मेरे साथ गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद को निकालिए। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनाबस के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। ध्यान दीजिए, तीतुस को साथ ले जाना पौलुस का चतुराई का काम था। तीतुस एक अन्य जाति से आया प्रचारक था और मेरे विचार में यह यरूशलेम की सबसे बड़ी सभा थी, जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम अध्याय 15 में किया गया है। यहाँ पर मुख्य विषय था कि मनुष्य विश्वास से उद्धार पाता है या उसे मूसा की व्यवस्था का पालन करना होता है। पौलुस के पास वहाँ तीतुस उदाहरण स्वरूप था। तीतुस का खतना नहीं हुआ था तो क्या उसे खतना करवाने के लिए बाध्य किया जाएगा? यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय था। मेरे मित्रों, यहूदी मत कहते फिर रहे थे कि यरूशलेम की कलीसिया का मानना था कि मसीह विश्वासियों को मूसा की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है। यरूशलेम की कलीसिया के सब विश्वासी निश्चय ही व्यवस्था के अधीन थे। वे सब भी मंदिर में आराधना के लिए जा रहे थे और सच तो यह है कि वह विश्वासियों के एकत्र होने का स्थान था। पौलुस और बरनाबस वहां इसलिए आए थे कि व्यवस्था और अनुग्रह के विषय अधिकृत वचन प्राप्त करें। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। मेरे मित्रों, पौलुस जानता था कि उसका सुसमाचार यदि शिष्यों के सुसमाचार से अलग है तो उसमें गंभीर समस्या है। पौलुस स्वीकार करता है, यदि मैं अलग सुसमाचार सुना रहा हूं तो मैं गलत हूं और मेरी दौड़ धूप व्यर्थ है। मैं निश्चय ही भ्रम में हूं और सही जानकारी से रहित या वंचित हूं। अतः वह यरूशलेम जाकर अपना सुसमाचार उन्हें सुनाता है। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 से 4 पद में लिखा है, परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया और वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। ध्यान दीजिए, पौलुस के प्रचार क्षेत्र में कुछ लोग छल से कलीसिया में प्रवेश कर चुके थे। वे विश्वासी तो नहीं थे, परंतु विश्वासियों को मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता का भेद लेने आए थे। उन्होंने पाया कि तीतुस एक यूनानी व्यक्ति था और पौलुस ने उसका खतना नहीं करवाया था। तो अब यरूशलेम की कलीसिया उसके बारे में क्या निर्णय लेगी? पौलुस कहता है उन्होंने उसे खतना के लिए विवश नहीं किया, उन्होंने झूठे भाइयों की बात नहीं मानी। यदि वे मानते तो हम पवित्र आत्मा की और प्रभु यीशु की स्वतंत्रता का आनंद लेने की अपेक्षा मूसा की व्यवस्था के दास होते। गलातियों की पत्री 2:5 में लिखा है, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। पौलुस विवाद के लिए तैयार था। इन झूठे भाइयों का कहना था, तीतुस जो कलीसिया पूर्व यहूदी के संपर्क में है उसका खतना नहीं हुआ है। पौलुस उन्हें उत्तर देता है, नहीं, वह खतना नहीं करवाएगा, फिर भी वह तुम्हारे बराबर ही विश्वासी है। उसने व्यवस्था से अलग विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। वह उद्धार के लिए किसी भी रूप में व्यवस्था का पालन नहीं करेगा। जी हाँ, यह पौलुस का एक दृढ़ कदम है। आज भी हम सबको सच्चे वचन के लिए दृढ़ कदम उठाने की आवश्यकता है। गलातियों के पत्र 2:6 में लिखा हुआ है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। पौलुस कहता है, हमने प्रेरितों के साथ बैठकर सुसमाचार सुनाया। उन्होंने कहा, भाई पौलुस, हमें आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, आप अपना सुसमाचार हमें सुनाए। पौलुस ने उन्हें सुनाया और पाया कि उसमें कोई कमी नहीं थी। वह परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार कर रहा था और वे भी अनुग्रह का ही प्रचार कर रहे थे। वे सब एक ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जो अति अद्भुत बात है। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्र 2:7 में लिखा है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। पौलुस और पत्रस का सुसमाचार अलग अलग नहीं थे, वे पूर्ण सामंजस्य में थे। खतना और खतना रहित सुसमाचार केवल उन जन समूहों का था जहां सुसमाचार सुनाया जा रहा था। पौलुस अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है क्योंकि उसे इसी के लिए बुलाया गया था। ये समुदाय खतना रहित थे और पत्रस यहूदियों में प्रचार कर रहा था जो खतना करवा चुके थे। गलातियों के पत्र 2:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। वास्तव में व्यंजन का प्रमाण खाने में है। पत्रस और पौलुस एक ही सुसमाचार को सुना रहे थे और लोग उद्धार पा रहे थे। आज इस सिद्धांत को देखें तो कोई भी मसीही सेवा पदोन्नति नहीं है। सच्ची परख परिणाम से होती है। विश्वासियों को अति सावधान रहना है कि वे फलवंत सेवा को ही आर्थिक सहयोग प्रदान करें। यदि किसी सेवा में फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो आप उसे आर्थिक सहयोग क्यों देते हैं? गलातियों के पत्र 2:9 में लिखा हुआ है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यहुना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनाबस को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। ध्यान दीजिए, यहां पर हम देखते हैं शिष्यों ने पौलुस की प्रेरिताई सेवा को स्वीकार कर लिया, संगति का दाहिना हाथ। सुसमाचार के अति उत्तम शब्द हैं और यह व्यक्तिगत संबंधों के सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है मसीह की बातों को बांटना। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पौलुस फिर यरूशलेम आया था और गरीब विश्वासियों के लिए दान लाया था, क्योंकि वह कलिसिया सताई गई थी और उनकी दशा बड़ी दयनीय थी, क्योंकि पौलुस ने अपने मन फिराव से पूर्व उन्हें सताया था। इसलिए वह अपने ही हाथों से यरूशलेम की कलिसिया को दान देना चाहता था, उनका सहयोग करना चाहता था। मेरे प्रियो, यह एक समाज सेवा था। आज के रूढ़िवादियों में इस चीज की कमी है। याकूब कहता है 2 अध्याय उसके 15-17 पद में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। यरूशलेम के प्रेरितों ने कहा, भाई पौलुस, गरीब साथियों की सहायता करना न भूलना। पौलुस ने उत्तर दिया, मैं इसी काम के लिए तो उत्सुक हूं। आइए अब हम आगे देखें अंताकिया में पत्रस के साथ पौलुस का अनुभव। पौलुस के इस व्यक्तिगत अनुभव के भाग में हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका अरब में अनुभव देखा है और यरूशलेम में शिष्यों के साथ उसका अनुभव देखा। अब हम अंताकिया में पत्रस के साथ उसका अनुभव देखेंगे। मुझे यह भाग बहुत ही मन भावन लगता है। मेरे मित्रों, अंताकिया की कलिसिया एक अन्य जाति कलिसिया थी। उसमें अधिकांश विश्वासी अन्य जाति में से थे, परंतु उसमें यहूदी विश्वासी भी थे। हम वहां के घटनाओं को तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम आरंभिक कलिसिया की कार्य विधि न समझें। वे प्रेम भोज का आयोजन करते थे जो प्रभु भोज के संबंध में था। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों की पत्री में हमें इस विषय पर पर्याप्त चर्चा की है। वे प्रभु भोज के लिए प्रेम भोज में सहभागी होते थे। अन्य जाति विश्वासियों के आ जाने के कारण कलिसिया में एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहूदी पृष्ठभूमि के विश्वासियों ने मूर्तियों का चढ़ाया हुआ मांस कभी नहीं खाया था। अन्य जातीय विश्वासी मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि के थे, अतः वे मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस खाने के आदि थे और वे मूसा की व्यवस्था में वर्जित पशुओं का भी मांस खाते थे, क्योंकि उनका पालन पोषण उस पृष्ठभूमि में हुआ था। अतः उन्हें इसका कुछ भी अंतर या फर्क नहीं पड़ता था। तो अब क्या किया जाए कि यहूदी विश्वासियों को बुरा न लगे। वे 2 अलग अलग तख्त लगाते थे, एक कोशेर अर्थात शुद्ध तख्त था और दूसरा अन्य जाति तख्त था। पौलुस अन्य जाति तख्त पर खाना खाता था जबकि वह एक यहूदी विश्वासी था, क्योंकि उसका मानना और सिखाना था कि मांस खाने से आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होते हैं। जब पत्रस अंताकिया की कलीसिया में आया तो उसके लिए भी वह एक नया अनुभव था, क्योंकि उसने अशुद्ध पशु का मांस नहीं खाया था। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि कॉर्नेलियुस के घर जाने से पूर्व याफा में उसे दर्शन हुआ था जिसमें चद्दर पर अशुद्ध पशुओं का मांस भी था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 13-15 पद में हम उसे पाते हैं। लिखा है, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पत्रस, उठ, मार और खा। परंतु पत्रस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसी कोई भी अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। मेरे मित्रों, पौलुस के पास अंताकिया आने से पूर्व पत्रस विश्वास में बहुत समय से था, परंतु वह खाने पीने के यहूदी नियमों का ही पालन करता आया था। यहां आकर उसने कोशेर भोजन तख्त अर्थात शुद्ध और अन्य जातीय भोजन तख्त देखा। आइए हम उसकी प्रतिक्रिया को देखें। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 11 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। मेरे मित्रों, खाने के समय पत्रस कोशेर शुद्ध भोजन तख्त पर गया और पौलुस अन्य जाति भोजन तख्त पर गया। पत्रस ने देखा कि पौलुस जिस भोजन तख्त पर बैठा था वहां अशुद्ध पशु का मांस था। भोजन के बाद जब वे बाहर आए तब पत्रस ने पौलुस से कहा, क्या तूने अशुद्ध मांस खाया? पौलुस ने कहा, हाँ। तब पत्रस ने पूछा, यदि मैं उस तख्त पर बैठूं तो क्या यह उचित होगा? अतः अगले दिन वह अन्य जाति भोजन के तख्त अर्थात टेबल पर बैठा और एक टुकड़ा मांस खाया। उसने पौलुस से कहा, यह तो अति स्वादिष्ट है। पौलुस ने कहा, हम अनुग्रह के अधीन हैं और अशुद्ध भोजन खाना या ना खाना कोई भी महत्व नहीं रखता है। मेरे मित्रों, मांस खाना या ना खाना परमेश्वर के समक्ष हमें ग्रहण योग्य नहीं बनाता है। अब रात के भोजन के लिए पत्रस फिर से अन्य जाति भोजन के टेबल या तख्त पर जा रहा था कि उसने वहां यरूशलेम की कलीसिया से आए हुए कुछ धर्म वृद्धों को देखा, तो वह तुरंत कोशेर अर्थात शुद्ध भोजन वाले तख्त और टेबल के पास आकर बैठ गया। पौलुस ने उसका यह व्यवहार देख लिया, तब क्या हुआ आइए देखें। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनाबस भी उनके कपट में पड़ गया, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? ध्यान दीजिए, पत्रस किसी भी तख्त पर खाना खाता कोई भी बुराई नहीं थी, परंतु यरूशलेम के धर्म वृद्धों को देख उसने कोशेर अर्थात शुद्ध तख्त या टेबल को चुना, तो वह अव्यक्त शब्दों में कह रहा था कि अन्य जाति गलत हैं और वह अर्थात यहूदी सही हैं। यरूशलेम के ये धर्म वृद्ध कट्टर रूढ़िवादी थे, अनुग्रह के अधीन यह उनका सौभाग्य था। मेरे मित्रों, यदि कोई किसी प्रकार का भोजन करना ना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वे मुझे खाने पीने की स्वतंत्रता दें। शमौन पत्रस मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता से मुंह मोड़कर यहूदी रूढ़िवाद में लौट गया था। आज भी बहुत से विश्वासी ऐसा ही करते हैं, परंतु पौलुस की झिड़की व्यवस्था पालन की अस्थिरता व्यक्त करती है। पत्रस के लिए अन्य जातियों की नाई रहना स्वीकार्य था, तो वह क्यों चाहता था कि अन्य जातियां यहूदियों की नाई रहे? इसी बात को वह कह रहा था जब उसने अन्य जातियों के तख्त को छोड़कर कोशेर अर्थात शुद्ध तख्त में गया। यदि अनुग्रह के अधीन अन्य जाति स्वरूप जीवन पत्रस के लिए व्यवस्था से हटकर जीना या अलग उचित था, तो क्या अन्य जातियों के लिए स्वयं वह जीवन बुरा था? यदि शमौन पत्रस व्यवस्था से अलग जीवन जी सकता था, तो क्या अन्य जातियों के लिए यह उचित नहीं था कि वे भी ऐसा ही जीवन जिए? मेरे मित्रों, हमने पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों का अवलोकन किया है, अब हम धर्म सिद्धांत का पक्ष देखते हैं। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। अब हम इस उत्कृष्ट पत्री में उस भाग पर आते हैं जिसमें विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में पौलुस का प्रवचन है। यहाँ पौलुस स्वयं को यहूदी कहता है। आइए हम देखें गलातियों के पत्री 2:15 लिखा हुआ है, हम तो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। उस युग का यहूदी अन्य जाति को पापी समझता था, और सच तो यह है कि उस युग में अन्य जाति और पापी प्रायवाची शब्द थे। अतः पौलुस की झिड़की व्यवस्था पालन की मूर्खता को प्रकट करती है। यह वास्तव में कैसी महान मूर्खता है। आज भी लोग इस प्रकार की मूर्खता में फंसे हुए हैं। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार की व्यवस्था में उलझे हैं, किस प्रकार के शुद्ध और अशुद्ध टेबल पर आप बैठे हुए हैं। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे खाने पीने से कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन को जांचें, परखें और देखें कि आज मेरा जीवन कहां पर है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करे और उसके वचन का पालन करे। जिस प्रकार पौलुस ने यहूदी होकर भी उस कार्य को, उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया, आज वह चाहता है कि मैं और आप भी उस कार्य को पूरा करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उससे प्रेम करें, उसकी निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम सब एक है यीशु के भवन में, हमको खरीद लिया यीशु के लहू से। गाए ये जमीन और गाए आसमान, गाए ये जमीन और गाए आसमान, प्रभु यीशु के आओ मिलके गा।